हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। मम्मी जी, आप इतनी परेशान क्यों नजर आ रही हैं? आइए अंदर बैठिए, अनारी ने निवेदिता को देखकर मुस्कुराते हुए कहा। इतना बोलकर अनाही दरवाजे से साइड हो गई और निवेदिता तेज कदमों से अंदर आ गई। फिर वो बेड पर बैठकर अनाही का हाथ पकड़कर बोली, तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम आज ऑफिस नहीं जा रही हो और तुम्हारी तबीयत क्या बहुत ज्यादा खराब है? कल तो तुम बोल रही थी कि तुम्हें ज्यादा तकलीफ नहीं है और तुम अच्छा महसूस कर रही हो, फिर अचानक ही क्या हुआ तुम्हारी तबीयत को? और पहले मुझे ये बताओ, तुम्हें ठंड लगी कैसे? कमरे में तो हीटर लगा हुआ है और बारिश में भीगने तुम बाहर गई नहीं? अनाही थोड़ा सहम चुकी थी, क्योंकि वो रूहान और अपने बीच के रिश्ते की सच्चाई निवेदिता को नहीं बताना चाहती थी। उसे पहले से पता था रूहान और निवेदिता के बीच थोड़ा मनमुटाव है और वो रूहान के खिलाफ कुछ भी गलत बोलकर उनकी नाराजगी को बढ़ाना नहीं चाहती थी। उसने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, नहीं मम्मी जी, ऐसे ही शायद हवा लगने के कारण मुझे ठंड लग गई थी और सुबह मेरी तबीयत ज्यादा खराब नहीं थी, लेकिन वेदांत जी ने मुझे जाने ही नहीं दिया। उन्होंने कहा कि जब तक दवाइयों का कोर्स खत्म न हो जाए मैं ऑफिस न जाऊं, इसलिए मैंने आज और लीव ले ली। अनाही की बात सुनकर निवेदिता ने चैन की सांस लेते हुए कहा, अच्छा, तुमने वेदांत से पूछा था? वो हेल्थ को लेकर कुछ ज्यादा ही सीरियस रहता है। हेल्थ के मामले में उसे छोटा सा भी कॉम्प्रोमाइज पसंद नहीं है। ये सुनकर अनाही ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, ये बात तो है, वो काफी ज्यादा केयरिंग है, वैसे सबका ख्याल रखते हैं। इनफैक्ट ऑफिस में भी अगर मेरी थोड़ी सी भी तबीयत खराब हो जाती थी तो वेदांत जी बहुत हेल्प करते थे। तब से ही मुझे पता है कि वो हेल्थ को लेकर ज्यादा केयरिंग हैं। अनाही कुछ और बोल पाती उससे पहले ही उन्हें कमरे के दरवाजे पर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। दोनों ने मुड़कर देखा तो सामने रूहान खड़ा था और रूहान के चेहरे के एक्सप्रेशन बता रहे थे कि उसने अनाही की बात सुन ली है। उसके दिमाग में फिर से अखिल के कहे शब्द गूंज उठे कि अनाही और वेदांत कब से साथ में काम कर रहे हैं, उनके बीच अंडरस्टैंडिंग होना लाजमी है। और दूसरी बात, अनाही का रिश्ता वेदांत के लिए था, उसके लिए नहीं। पर निवेदिता को अपने कमरे में देखकर रूहान का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। उसके कदम आगे बढ़ ही नहीं रहे थे। निवेदिता समझ चुकी थी कि रूहान को उसका यहाँ आना पसंद नहीं आया। वो जल्दी से बेड से उठी और अनाही के हाथ पकड़कर मुस्कुराते हुए बोली, अब मैं चलती हूँ बेटा, थोड़ा काम है मुझे। इतना बोलकर निवेदिता हड़बड़ी में कमरे से बाहर चली गई। उसके बाहर जाने के बाद रूहान कमरे के अंदर आया। रूहान सीधा क्लोजेट में गया और अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में चला गया। उसने अनाही से एक शब्द भी नहीं कहा, जिससे अनाही ने रात की बात याद की कि रूहान को लगता है वो उसके लायक नहीं है। सोचकर अनाही को थोड़ा बुरा लगा कि रोहन नशे में कुछ और बोलता है और इन रियलिटी वो इतना एटीट्यूड में रहता है जैसे उसे समझना कोई खेल की बात नहीं है। वो तो जैसे यहाँ का प्राइम मिनिस्टर है जो किसी से सीधे मुंह तक बात भी नहीं करता है। नहीं नहीं, फिर रूहान ऐसे ही आया और खुद में ही बड़बड़ाते हुए अपनी बालकनी में चली गई। वहाँ बैठकर उसने अपना लैपटॉप ऑन किया और निमानी हाउस के आसपास की नर्सरी शॉप देखने लगी जिससे वो प्लांट खरीद सके। रूहान जब नहाकर बाहर आया तो उसकी नज़र अचानक ही बालकनी पर चली गई। नए कारपेट और ग्लास डोर के लिए लगा पर्दा देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गईं। निमानी सो रहा था। अनाही ने कमरे में सोने के लिए मना किया था और अनाही ने तो उसे बालकनी को ही अपना कमरा बना लिया था। हाँ, वो बिल्कुल मॉडर्न लुक वाला रूम नजर आ रहा था और रूहान का दिल कर रहा था एक बार वहाँ जाने का। वो जिसे कभी सिर्फ अनाही का प्राइवेट प्लेस बता रहा था, अब वहाँ जाने के लिए उसके पैर तड़प रहे थे। उसके कदम अपने आप वहाँ उठ रहे थे। उसने ग्लास डोर जैसे ही खोलना चाहा तो वो खुल गया और अनाही की नज़र भी उस पर पड़ी। रूहान ने नजरें घुमाकर पूरी बालकनी को देखा, जिसका इंटीरियर डिजाइन बिल्कुल डिफरेंट हो चुका था। अनाही ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, क्या चाहिए था आपको? रूहान ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, मुझे आपसे बात करनी थी। किस चीज़ के बारे में? अगर आप फ्री हैं तो मैं। अनाही ने अपना लैपटॉप बंद किया और फिर सोफे से थोड़ा खिसक कर उसके लिए जगह बनाते हुए बोली, क्या काम है आपको मुझसे? रूहान ने अनाही के चेहरे को देखते हुए कहा, मुझे आपकी कंपनी में जॉब करनी है, पार्ट टाइम जॉब, फुल टाइम नहीं करनी है, क्योंकि मुझे कॉलेज भी जाना है पर मैं हाफ डे करना चाहता हूँ। शाम को 3:30 बजे मेरा कॉलेज खत्म हो जाता है तो मैं 3 बजे से ज्वाइन कर सकता हूँ। उसके बाद 8 बजे तक 5 घंटे वर्क हो जाएगा, तो क्या आप सीईओ से इस बारे में बात कर सकती हैं? अनाही को यकीन नहीं हो रहा था कि रूहान ये बात बोल रहा है। उसने खुद को कन्फर्म करने के लिए कहा, आर यू श्योर कि आपको वेदांत जी के ऑफिस में काम करना है, क्योंकि मैं जहाँ तक सुना है आपको काम करना पसंद नहीं है। रोहन ने अपनी नजरें फेरते हुए कहा, हाँ कभी कभी वो चीज भी करनी पड़ती है जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं होती। इस शादी को ही देख लो, मुझे तो नहीं करनी थी ये शादी, मुझे नहीं पसंद था ये रिश्ता, लेकिन फिर भी मैं कर रहा हूँ ना। और कुछ चीज ऐसी होती हैं जिनका ना पसंद करो तो भी वो धीरे धीरे पसंद आने लगती हैं। ये मैं अपना करंट एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। और अब मुझे याद आ गया है कि मैं रात को आपको क्या क्या बोला था। आई एम रियली सॉरी अगर आपको बुरा लगा हो, पर ये बात सच है कि मैं कोई काम धंधा नहीं करता हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि मैं आपके लायक नहीं हूँ। मुझे लगता है मैं किसी लड़की के लायक नहीं हूँ। मैं उसको एक अच्छी लाइफस्टाइल नहीं दे सकता हूँ, अपने पैसों से उसके लिए कुछ खरीद नहीं सकता हूँ। इस वजह से मैं आपके लायक खुद को नहीं समझता। आपको इसके लिए कोई और थॉट अपने दिमाग में लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि काफी सोचने पर मुझे समझ आया कि आप इसका दूसरा मतलब भी निकाल सकती हैं। और रही बात गर्लफ्रेंड वाली, तो मेरा ब्रेकअप हो चुका है, फिलहाल मैं सिंगल हूँ, तो मेरे कैरेक्टर के बारे में भी कोई गलत अजम्पशन मत बनाना। अनाही ने एक आईब्रो चढ़ाते हुए कहा, ओवरथिंक सिर्फ आप ही करते हैं, मैं नहीं। तो मैं क्यों ऐसा जंक्शन बनाऊंगी कि आप मुझे कुछ झूठ बोल रहे हैं या फिर आपका कैरेक्टर कैसा है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। बल्कि मैं तो खुद चाहती हूँ आप कंफर्टेबल महसूस करें, इसीलिए तो मैं वही कर रही हूँ जैसा आप शुरू से चाह रहे हैं। और देखो आज तो मैंने अपनी बालकनी को एकदम परफेक्ट भी बना लिया है, अब तो बिल्कुल जरूरत नहीं है मुझे कमरे में आने की। आई होप आपको ये बहुत पसंद आया होगा। रूहान के दिल को ही पता था कि उसे ये कितना पसंद आया था और कितना नहीं। उसने अपनी मुट्ठियाँ कसकर भींच रखी थीं। फिर उसने सोफे से उठते हुए कहा, काफी अच्छा है, मैं बस यही बोलने आया था, अगर आपको मेरे ऑफिस आने से कोई प्रॉब्लम हो तो आप वो भी मुझे बता सकती हैं, मैं नहीं आऊँगा फिर। रूहान चाहता था कि अनाही सामने से सब कुछ क्लियर कर दे, और वो भी उसके बिना पूछे, जो कि इम्पॉसिबल था। अनाही ने आंखें सिकोड़ कर कहा, और आखिर मुझे क्या प्रॉब्लम होगी आपसे, मैं तो खुद चाहती हूँ ना कि मेरा हस्बैंड रोज ऑफिस जाए, और आप बहुत ज्यादा केयरलेस हैं। बस इस मामले में मैं बोल सकती हूँ कि आप लड़की को नहीं संभाल सकते हैं, बाकी ऐसा कोई कोर्स नहीं बनाया जिसे सीखकर लड़के लड़कियों के लिए परफेक्ट बनते हैं, तो आपको उस चीज के लिए इनसिक्योर होने की जरूरत नहीं है।
अनाही इस बार काफी प्यार से रूहान को समझा रही थी, जैसे किसी बच्चे को समझा रही हो, लेकिन रूहान वो तो अनाही के इस प्यार भरे शब्दों का मतलब कुछ और ही निकाल रहा था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वो अपने लाल होते चेहरे के साथ मुड़कर कमरे के अंदर चला गया, क्योंकि वो अनाही को नहीं दिखाना चाहता था कि वो शर्मा रहा है, वो भी सिर्फ उसके दो प्यार भरे शब्दों को सुनकर।